मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग अभी इतिहास के प्रश्नों पर भी आज कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए कुछ जो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं उन पर एक छोटी सी नजर मार लेते हैं। क्या आपने कल का दूरदर्शन न्यूज सुना? शायद नहीं सुन पाए होंगे, उस समय बिजी रहे होंगे या कुछ दूसरा काम आ गया होगा। कोई बात नहीं, कल से सुनना शुरू कर देंगे। अगर आपने कल के दूरदर्शन के न्यूज को सुना हो तो उसमें एक शब्द बार बार आ रहा था और वह था हीरा मॉडल। और यदि आपने न्यूज सुनी है तो क्या आप बता सकते हैं कि हीरा मॉडल का संबंध किससे था, ये शब्द का इस्तेमाल किसने किया, और साथ ही साथ यह भी कि इसका अर्थ क्या हुआ हीरा मॉडल। कल के न्यूज में आपने सुना होगा और आज के अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए थे और उन्होंने बकायदे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसके लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की है। मैं जानबूझकर के स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं। त्रिपुरा के बारे में पूछा जाए, चलिए अगरतला तो आप समझ लीजिए कि उसका एक राजधानी हो गई। या असम के बारे में पूछा जाए, असम के बारे में फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि वो अपेक्षाकृत बड़ा राज्य है। मान लीजिए कि जैसे अब सपा कानून को लेकर के है तो वो नागालैंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है तो एक साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर देखा जाता है। इसलिए मैं जानबूझ करके अभी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने हीरा मॉडल की बात कही, उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में ही बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन इसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में लागू कर सकते हैं। हीरा क्या है? देखिए, अब एक नया शब्द उन्होंने दिया और मुझे लगता है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर कुछ अगर पूछा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर कोई प्रश्न आता है तो अगर कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव घटना न घटी हो तब तक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाता कि अगरतला के बारे में पूछा जाए। मैं समझता हूं कि यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपके उत्तर में यह हीरा मॉडल शब्द आना ही चाहिए। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए चार उपाय बताए हैं या चार पिलर्स दिए हैं। इन्हें देख लीजिए, एच यानी कि हाईवेज, सड़कें बनाई जानी चाहिए, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। आई का मतलब है इंटरनेट, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, जैसे संचार व्यवस्था आप कह सकते हैं। इसके बाद है आर, रेलवे, रेलवे से उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। और इसके बाद दिया हुआ है एयरपोर्ट, और उन्होंने बकायदे वहां जो एक एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन जो था उसका उद्घाटन भी किया, एयरपोर्ट। HIRA हीरा मॉडल, यानी कि अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डेवलप करना है तो हमें इन चार क्षेत्रों में काम करना होगा। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आप देखिए कि उधर जब हम ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे तो ये हमारे लिए गेटवे का काम करते हैं। तो दोस्तों, कल भले ही वह छोटी सी खबर थी लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसे अपडेट करने के लिए न्यूज का वह छोटा सा हिस्सा महत्वपूर्ण था। और यदि आपने उसे नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, आज के अखबारों में इससे संबंधित खबरों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के तहत एक और शब्द आया था, विद्या ज्योति स्कूल। विद्या ज्योति स्कूल यानी कि 100 विद्या ज्योति स्कूल खोले जाएंगे। ये विद्या ज्योति स्कूल क्या है? बहुत ही देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है, आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। विद्या ज्योति स्कूल देश के अलग अलग भागों में खुले हुए हैं, खासकर जो बहुत धीमे गति से सीखते हैं, स्लो लर्नर जिन्हें आप कहेंगे, कोई प्रॉब्लम है ना, आप उन्हें कोई भी बात सिखाइए समझाइए तो बहुत देरी से वो समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इन लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, स्पेशल स्कूल खोले गए हैं, उन्हें विद्या ज्योति स्कूल का नाम दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में भी फिर कुछ इस तरह के स्कूल खुले हैं, फिर वो अपने अपने ढंग से नाम दे देते हैं, ये है विद्या ज्योति स्कूल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो वेद प्रताप वैदिक जी का लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सार्क का सम्मेलन अभी होने जा रहा है, सार्क का सम्मेलन, और ये पाकिस्तान की अध्यक्षता में होना है तो स्वाभाविक है कि वो सम्मेलन पाकिस्तान में होगा, और इसके लिए भारत को भी बुलाया गया है। आपको यहां एक तथ्य स्पेशली अपने दिमाग में रखना है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल के आधार पर मैं ये बात बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि अगर आपने दक्षेश, जिसे हम सार्क कहते हैं, उसके बारे में तैयारी कर ली हो तो आपको यह नियम मालूम भी हो कि इनके संविधान में एक बात कही गई है, वो ये है कि अगर कोई भी निर्णय, जैसे कि अभी पाकिस्तान में इसका सम्मेलन होना है, इसके जितने भी सदस्य हैं, शायद 8 सदस्य हैं, अगर उसमें से एक भी सदस्य आपत्ति करेगा या कहेगा कि नहीं हम तो सम्मेलन में नहीं जाएंगे, तो सम्मेलन नहीं हो सकेगा। शायद इस तरह के संविधान के नियम आपको दूसरे किसी भी समूह में पढ़ने को, सुनने को नहीं मिले होंगे। मतलब सभी का जरूरी है कि वो इसके प्रति सहमति व्यक्त करें। यहां तक कि जो फैसले भी लिए जाते हैं इस सम्मेलन में, सार्क में, वो भी सर्वसम्मति से होने चाहिए, बहुमत से नहीं। तो यही कारण है कि आप सोच करके देखिए कि इसका जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वो 2014 में हुआ था, और उसके बाद से अब तक कोई सम्मेलन नहीं हो सका है, क्योंकि किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी देश की कोई ना कोई आपत्ति हो जाती है। तो अभी जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भारत इसमें शामिल हो, और अगर वो यहां नहीं आ पाता है, फिजिकली नहीं आ पाता है, तो कम से कम आप यू कह लीजिए जूम के माध्यम से तो वह इसमें शामिल हो ही जाए। लेकिन देखें कि आगे क्या होता है। फिर भी मुझे लगता है कि इसे आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सार्क की जो मूलभूत समस्या है वो आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये संगठन बहुत इंपॉर्टेंट संगठन था, लेकिन एक प्रकार से आप यूं कहिए कि डल पड़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा अब इसका रोल रह नहीं गया है, या यूं कह लीजिए कि एक्टिविटीज नहीं रह गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबरों के बारे में। आइए अब मुख्य विषय के तहत इतिहास के एकाध दो प्रश्नों को और देख लेते हैं, समय जिस तरह की हमें इजाजत देगा। 8 प्रश्न हम देख चुके हैं 20 सेट के हिसाब से, 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न दोस्तों मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रिस्क ओरिएंटेड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत आसान है। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने इस तरह का एक उदाहरण दिया था तमिलनाडु के संदर्भ में, लगभग उसी तरह की बात इस प्रश्न पर भी लागू होती है, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 4 कथन हैं, ये आपसे 4 तरह की जानकारियों की अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विषय से जुड़ी हुई 4 जानकारियां हों। हालांकि अगर आप उस तरह से लेंगे तो ठीक है, वो कला का आ जाएगा, आर्किटेक्चर का आ जाएगा ये प्रश्न जो है, लेकिन आपको 4 आर्किटेक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए और स्थान के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इस तरीके से ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सरल कैसे हो जाता है अभी हम देखेंगे। पहला कथन है, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। देखिए, सामान्यतः अजंता एलोरा की गुफाएं या और इस तरह की जो दूसरे हमारे जो प्राचीनतम जो कलाएं हैं, स्थान पर पूछा जाता है कि औरंगाबाद में है या मुंबई में है या फलानी जगह पर है, ये सांची में है, विदिशा में है, इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन इसमें उसे टफ बना दिया है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। आप देख रहे हैं, 4 गुफाएं, स्तूप, मंदिर दिया हुआ है, और इसके बाद नदी घाटी दे दिया है। इसके वजह से यह प्रश्न कठिन हो गया, सामान्य नहीं है। अब आपके मन में शायद उत्सुकता हो कि फिर यह सरल कैसे है। सरल इस रूप में है कि यदि आप इसके सही स्थान वाले राज्य में रह रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और इस रूप में भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप उसे डिलीट कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। अब ये देखिए, जो सांची का स्तूप है ये भोपाल के निकट है, तो मध्य प्रदेश जो भोपाल के निकट जो स्टूडेंट रह रहे हैं या जो ग्वालियर वगैरह में है, शायद वो अनुमान लगा लें कि भाई जो चंबल नदी है वो तो उधर भिंड मुरैना की तरफ है और फिर घूमकर चली जाती, तो नदी घाटी में शायद न हो, और अगर वो ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आउटराइट रिजेक्ट कर दे कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी तीन तो बच जाएंगे, उनका क्या करेंगे आप? एक को रिजेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप थोड़े से और सतर्क स्टूडेंट हैं तो दो को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन बाकी दो, लेकिन फिर अगर आप दो को यदि रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको चांस लेना चाहिए, फिर आपको निशान लगाना चाहिए, क्योंकि 50% तो कम से कम सही होने की संभावना तक आप पहुंच गए हैं। जहां भी आप दो कन्फर्म है कि ये नहीं होंगे, या ये कन्फर्म है कि इन दो में से ही कोई एक होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डालिए, आंख बंद करके नहीं कि ठीक है चलो किसी में लगा देते, थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डालिए, हो सकता है कि आपको 48 और 52 का झुकाव मिल जाए, जो 52% लग रहा है या 51% भी लग रहा है उस पर निशान लगा दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है और बिहार का स्टूडेंट है, उनके क्षेत्र में कोई चीज स्थित है, तो वो इसको बड़े आराम से निशान लगा देगा, सही पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रह रहा है। अमरावती स्तूप गोदावरी, तो जो अमरावती के आसपास रह रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, वो इसी तरह से वो लेकर के चल रहे हैं, चंबल नदी बकायदे मध्य प्रदेश से होकर के निकलती है, तो वो रूप इसी तरह से उन्होंने रखा है कि आप फंस जाएं। लेकिन अगर बाई दिवे इसका जो सही उत्तर है उस क्षेत्र के आप आसपास रह रहे हैं, तो आप तो बाएं हाथ से निशान लगा देंगे कि अरे अरे यार यही तो उत्तर है। दोस्तों मेरी समझ से इस प्रश्न की मैंने जिस तरीके से व्याख्या की है तो शायद उससे आपका जो डायमेंशन है आंसर जानने का, पकड़ने का, डेफिनेटली कुछ न कुछ और अधिक बढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं आशुतोष आचार्य, योगिता चौहान और कृति शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।